पंचास्तिकाएं लेक्चर नंबर 1 ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणं इंद्रसदवंदियाणं त्रिभुवनहितमधुरवीक्षसत्काणं अंतादितगुणाणं नमो दीनाणं जिदभवाणं। आज से हम जो पांच परमागम्य जिसका नंबर लगता है ऐसे पंचास्तिकाएं नामक जो शास्त्र है जो कुंदकुंदा आचार्य भगवान ने लिखा है उसके हम आज से स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं। देखो बात ऐसी है आचार्यों का या आज तक अपने जितने भी सारे शास्त्र हैं उन शास्त्रों की विशेषता ऐसी है कि उसमें जो नाम रहेगा वो नाम ही आपको पूरे शास्त्र में क्या लिखा है ये बात बताता है। जैसे हमने देखा है समय सार, तो समय यानी द्रव्य और उसमें सारभूत ऐसा आत्मद्रव्य जो है उसकी बात उसमें है। प्रवचन सार यानि प्रवचन सार यानि प्र यानि विशेष रूप से वचन है जिनके यानि दिव्य ध्वनि का जो सार है वो प्रवचन सार है। ऐसे इस तरह से जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है तो वहाँ पर भी मोक्ष मार्ग का प्रकाशन किया हुआ है, वहाँ मोक्ष मार्ग बनाया नहीं है। इसी तरह यहाँ पर भी पंचास्तिकाएं ये नाम है, पंचास्तिकाएं में ये छह द्रव्यों की बात है तो फिर पांच अस्तिकाएं ऐसा क्यों बताया? तो ये पंचास्तिकाएं का क्या अर्थ होता है उसको हम देखेंगे तो ये बात अपने ख्याल में आएगी। अस्ति यानी जिसको है पना जिसको हम कहते हैं, लेकिन यहाँ अस्थि बना यानी जो अधिक प्रदेशी द्रव्य है उसको नहीं अस्थि यानी है पना है और कायत्व यानी वो जिसमें एक से अधिक प्रदेशी जिनका वॉल्यूम है अनेक प्रदेशी है ऐसे को कायत्व कहते हैं। तो पांच पंचास्तिकाय जीवास्तिकाय में जीव द्रव्य की बात है और उसके असंख्यात प्रदेश है इसलिए उसका हैपना भी है और कायत्व भी है और पुद्गल में भी अनेक प्रकार अनेक पुद्गलों का एक स्कंद हो सकता है उसमें भी कायत्व होने की शक्ति है इसलिए पुद्गल अस्ति क्या लिया। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य जो है वो तो असंख्यात प्रदेश ही है तो धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ऐसा उसमें भी हम बता सकते हैं। और आकाशास्तिका आकाश तो अनंत प्रदेश ही है तो उसमें कायत्व भी है और अस्थिपना भी है लेकिन काल द्रव्य जो है उसमें सिर्फ है पना है उसमें कायत्व नहीं क्योंकि एक प्रदेशी है उसमें पुद्गल जैसे अनेक प्रदेशी होने की योग्यता नहीं है इसलिए यहाँ पंचास्तिकाय की बात है। तो पंचास्तिकाय में ये बात बताते हुए आचार्य कहते हैं कि ये छह द्रव्यों की बात इसमें आएगी और इसी पर से ऐसे गड़बड़ हो रही है कि अन्य मति काय द्रव्य को मानते ही नहीं है लेकिन उनका मत कितना खोटा है ये बताने के लिए शास्त्र का नाम ही पंचास्तिकाय लिख दिया उस पर से उनमें गड़बड़ी चालू हो गई। ऐसी दोनों तरफ से बातें हैं। अब हम पेज नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखो प्रथम ग्रंथना आदिमा श्रीमद् भगवत कुंदकुंद आचार्य देव प्रणित प्राकृत गाताबद्ध आ पंचास्तिकाय संग्रह नामना शास्त्रनी समय व्याख्या नामनी संस्कृत टीका रचनार श्री आचार्य श्री अमृत चंद्राचार्य देव श्लोक द्वारा मंगल अर्थे परमात्मा ने नमस्कार करे छे। अभी यहाँ पर ये जो पहले छह जो गाथाएं हैं
श्लोक जो है ना वहाँ पर
ये श्लोक जो है छे वो अमृत चंद्राचार्य ने जो टीका रची है समय सार व्याख्या में, समय व्याख्या में, उसमें से ली है।
देखो ये मूल ग्रंथ तो कुंदकुंदाचार्य ने लिखा है, वो प्राकृत गाथा बद्ध है, और उसमें जो जयसेनाचार्य ने जो उसकी तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका लिखी है, यहाँ ऊपर लिखा है ना तात्पर्य वृत्ति एक नंबर जो वहाँ से शुरू हुआ है, वो संस्कृत अलग बात है, और फिर समय व्याख्या जो लिखा है वो अमृत चंद्र ने लिखा है। तो यहाँ भी आगे चलकर यानी ये दोनों ही टीका यहाँ लिखी गई है, और जो अमृत चंद्र की टीका जो है वो जहाँ संस्कृत है मगर बोल्ड में लिखा है और उसका अनुवाद यहाँ लिखा है, परंतु जो शेषनाचार्य की वो संस्कृत में ही लिखी है, उसका अनुवाद नहीं किया हुआ। आपके उसमें है क्या उसका अनुवाद? जयसेनाचार्य का, हाँ हाँ उनका है। तो हम अमृत चंद्राचार्य का पढ़ेंगे।
समय व्याख्या का पहला श्लोक हम पढ़ेंगे।
एक मिनट।
सहजानंद
सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। इसका अर्थ पीछे एक एक का अर्थ देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे।
सहज श्लोकार्थ दे रहे हैं, सहज आनंद अने सहज चैतन्य प्रकाश में होवा थी जे अति महान छे अने अनेकांत में स्थित जेनो महिमा छे ते परमात्मा ने नमस्कार हो। देखो यहाँ परमात्मा को नमस्कार कहने के पहले परमात्मा कहने अरिहंत और सिद्ध दोनों को यहाँ हम ले सकते हैं। यहाँ तो कह रहे हैं जिनका सहज आनंद है, आनंद प्राप्त हुआ है वो सहज है, यानी उसमें कोई खिंचातानी नहीं है, सहज रूप से अपने स्वभाव की प्राप्ति करने से सहज आनंद और सहज चैतन्य प्रकाश में होने से जो अत्यंत महान है। और ये भगवान कैसे हैं तो कहते हैं अनेकांत में स्थित है जिनका महिमा।
अभी हमने देखा लघु तत्व स्फोट में अनेकांत कैसे अनेकांत स्वरूप है उसके बहुत विस्तार से वर्णन किया था।
ऐसे परमात्मा को नमस्कार हो ऐसा कह रहे हैं। अभी दूसरा श्लोक
दुर्निवारणयानेक विरोध ध्वंस नौषधि स्यात्कार जीविता जी आज जैनी सिद्धांत पद्धति।
हवे टीकाकार आचार्य देव श्लोक द्वारा जिनवानी की स्तुति करे जे। पहले तो परमात्मा के भगवान की स्तुति की, अभी जिनवानी की स्तुति कर रहेंगे। स्यात्कार जेनु जीवन छे, यानी स्यात्कार यानी स्यात जिसमें स्यात के माध्यम से जो समझाई है ऐसी जिनवानी जो है। स्यात यानी किसी प्रकार से कथन करना, किसी अपेक्षा से कथन करना। स्यात्कार जेनु जीवन छे
ऐसे आता है ना, स्यात पद से जो मुद्रित है ऐसा आता है ना।
स्यात्कार जेनु जीवन छे एवी जेनी
जैनी
એવી જૈની, જૈની એટલે જિન ભગવાનની સિદ્ધાંત પદ્ધતિ કે જે દુર્નિવાર નય સમૂહના વિરોધનો નાશ કરનારી ઔષધિ છે તે જયવંત હો। એ નય સમૂહ કૈસા હૈ તો દુર્નિવાર હૈ, યાને નિવારણ કરને મેં બહુત કઠિન હૈ। એસા જો નય સમૂહ હૈ ઉસકા વિરોધ કરના करने के लिए ये जो जैनेन्द्र भगवान की साक्षात्कार
नए समूह का जो विरोध है वो दुर्निवार है, वो विरोध का नाश करने वाली
है। देखो दुर्निवार नए समूह का विरोध जो करने वाली है उसका नाश करने वाली जिनवानी
नहीं, विरोध का नाश करने वाली, विरोध का नाश करने वाली, विरोध करने वाले का नाश नहीं। देखो जो हमने नित्य अनित्य विरोधी है
तो वो विरोध का नाश करने वाले हैं।
वो विरोध का
तो मैंने वही कहा, विरोध का नाश मैंने क्या कहा? देखो नए समूह कैसा है तो दुर्निवार है, यानी उनका निवारण करने में बहुत कठिन है।
नयों का विरोध है दुर्निवार है,
नयों में ऊपर ऊपर से देखने से जो विरोध लगता है,
हाँ,
वो विरोध को जैन वाणी जो है वह उसका नाश करने वाली है, औषधि है। हे जयवंत हो, अभी तीसरा श्लोक।
सम्यज्ञानामलज्योतिर्जननी द्विनयाश्रया अथात समयव्याख्या संक्षेपाणाभिधीयते।
अभी टीकाकार आचार्य श्लोक द्वारा आ पंचास्तिका संग्रह नामना शास्त्र ने टीका रचवानी प्रतिज्ञा करे छे। हवे अहीं थी जे सम्यक ज्ञान रूपी निर्मल ज्योतिनी जननी छे, एवी द्विनयाश्रित एटला बे नयोना आश्रय करनानी समय व्याख्या पंचास्तिका संग्रह नामना शास्त्र ने समय व्याख्या नामनी टीका संक्षेप थी कहेवामां आवे छे। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? यहाँ पर ये बता रहे हैं कि समय से व्याख्या नाम की जो कुछ टीका रच रहे हैं वो कैसी है, तो वो सम्यक ज्ञान रूपी निर्मल ज्योति की जननी है। और कैसी है? कि दो नयों का आश्रय करने वाली है। दो नय यानी एक द्रव्यार्थिक नय, एक पर्यार्थिक नय। ऐसे समय व्याख्या जो टीका है वो अभी हम संक्षेप में बता रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। चौथा नंबर का श्लोक।
पंचास्तिकाय षड् द्रव्य प्रकारेण प्ररूपणम् पूर्वं मूल पदार्थानां इह सूत्र कृताकृतम्।
हवे त्रण श्लोकों द्वारा यानी चार पांच और छे, ये त्रण श्लोक द्वारा आचार्य देव पंचास्तिकाय संग्रह नामना शास्त्र में कया कया विषयों निरूपण छे ते अति संक्षेप थी कहे छे। श्लोकार्थ अहीं पहला सूत्र करता है मूल पदार्थों नु मूल पहला सूत्रकर्ता यानी किसने? कुंदकुंदा आचार्य ने। मूल पदार्थों नु पंचास्तिकाय अने षड्द्रव्यना प्रकार थी प्ररूपण कर्युं छे, अर्थात आ शास्त्र में प्रथम अधिकार ने विषय श्रीमद भगवत कुंदकुंदा आचार्य देवे विश्वना मूल पदार्थों नु पांच अस्तिकाय अने छह द्रव्यनी पद्धति थी निरूपण कर्युं छे। इसके बारे में हमने शुरुआत में ही देखा था। पांच नंबर।
जीवा जीव द्विपर्याय रूपाणां चित्रवर्त्मनां ततो नव पदार्थानां व्यवस्था प्रतिपादिता।
पछी बीजा अधिकार में जीव अने अजीव ए बेना पर्याय रूप नव पदार्थों नी के जेमना मार्ग अर्थात कार्य भिन्न भिन्न प्रकारना छे तेमनी व्यवस्था प्रतिपादित करी छे। एने जीव और अजीव के बारे में बताया है। छठा श्लोक।
ततस्तत्व प्रतिज्ञान पूर्वेण त्रितयात्मना प्रोक्ता मार्गेण कल्याणी मोक्ष प्राप्तिर पश्चिमा।
श्लोकार्थ पछी बीजा अधिकारना अंतमा तत्वना परिज्ञान पूर्वक पंचास्तिकाय षड्द्रव्य अने नव पदार्थना यथार्थ ज्ञान पूर्वक त्रयात्मक मार्गनी। ये त्रयात्मक मार्ग कौन सा है मालूम है बहन आपको? नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आगे लिखा है ब्रैकेट में, देखो देखो। त्रयात्मक मार्ग थी एटले सम्यक दर्शन ज्ञान, चारित्रात्मक मार्ग थी कल्याण स्वरूप उत्तम मोक्ष प्राप्ति कही छे। अभी यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर तत्वज्ञान ना परिज्ञान पूर्वक यानी संपूर्ण ज्ञान से किसके तत्वों के, तो यानी पंचास्तिकाय षड् द्रव्य और नव पदार्थ। नव पदार्थ के नाम मालूम है ना? नहीं मालूम है। तो इसमें तत्व बोलने का हो जीव तत्व, क्योंकि पंचाष्टिकाएं में भी पहला नाम जीव का ही आता है, छह द्रव्यों के नाम में भी पहला नाम जीव का आता है, तो द्रव्य पूछेंगे तो जीव द्रव्य बोलना, और तत्व बोलना है तो जीव तत्व अजीव तत्व आदि आपने जो बोला बराबर बोला। अतः जीव पदार्थ ऐसे मनना नहीं इतना ये सात तत्वों में पुण्य पाप दो अधिक ऐड करने से उसी का नाम नव पदार्थ होता है। त्रयात्मक मार्ग थी एटले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक मार्ग थी कल्याण स्वरूप उत्तम मोक्ष प्राप्ति कही छे। हाँ, अथ सूत्रावतार। हवे श्रीमद भगवत कुंद कुंद आचार्य देव विरचित गाथा सूत्र नु अवतरण करवामा आवे छे। ये तो हमने पढ़ा था, फिर भी पढ़ेंगे,
फिर पढ़ेंगे या फिर संस्कृत भी पढ़ेंगे। इंद सदवंदी आणम शिवणगिद मधुर विसदवक्काणम अंतादीत गुणाणम नमो जिनानं जिदभवानं इंद्रशतवंदितेभ्य त्रिभुवनहित मधुर विशदवाक्येभ्य अंतातीत गुणेभ्यो नमो जिनेभ्यो जितभवेभ्य।
आगे लिखते हैं शत इंद्रवंदित त्रिजगत निर्मल मधुर वदनारने निसीम गुणधर नारने जित भवन मोजिन राजने। अभी अन्वयार्थ संस्कृत के साथ है तो इंद्र शत वंदितेभ्य, सौ इंद्रो थी जे वंदित छे। कौन वंदित छे? तो जिनेन्द्र परमात्मा, महावीर भगवान। त्रिभुवन हित मधुर विशद वाक्येभ्य, त्रण लोक ने हितकर मधुर अने विशद, विशद एटले निर्मल अने स्पष्ट जेमनी वाणी छे, अंतातीत गुणेभ्य चैतन्यना अनंत विलास स्वरूप अनंत गुण जेमने वर्ते छे अने जीत भवेभ्य, जीत भवेभ्य भव ऊपर जेमने जय मेळव्यो छे, जिनेभ्य ते जिनोने नमः नमस्कार हो। एटले आ एक नव एक जिन की बात नहीं, जिनेभ्य अनेक जिनों की बात है। अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे।
अभी छह नंबर के पृष्ठ पर जहाँ अमृत चंद्राचार्य की टीका,
हमारे यहाँ छह नंबर, आपके यहाँ आठ नंबर होगा,
अनुवाद है।
आप इनका पढ़ेंगे कि मैं पढ़ूं? अनुवाद। आई आ गाथा मां जिन्होंने नमस्कार हो एम कही ने शास्त्र ना आदि मां जिन्होंने भाव नमस्कार रूप असाधारण मंगल करियू। अभी देखो यहाँ भाव नमस्कार यानी क्या, कि जिसने अपने स्वरूप को जाना है, पहचाना है, अपना अनुभव किया है, वह जो जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करेंगे तो वो तो हाथ जोड़ के नमस्कार करे, वो तो द्रव्य नमस्कार हुआ, लेकिन उसी समय अपने आत्मा का अनुभव करना है उसको भाव नमस्कार कहेंगे। तो क्या कह रहे हैं देखो, आई आ गाथा मां जिन्होंने नमस्कार हो एम कही ने शास्त्र ना आदिमा यानी शास्त्र के शुरू में ही जिन्होंने यानी जिनेन्द्र भगवान ने भाव नमस्कार रूप असाधारण मंगल कहूं, यानी ये कोई ऑर्डिनरी असाधारण मंगलिक है। अपना लक्ष्य करने से क्या होगा, अपना अनुभव हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल करो ना, पर वो भाव नमस्कार नहीं कहलाएगा।
देखो भगवान को जो नमस्कार कर रहे उन्होंने पर्याय में प्रकट किया, जो व्यवहार होता है उनमें जो प्रकट हुई है पर्याय उसको है, नहीं तो फिर सब सबके शुद्धात्मा फिर भगवान को ही क्यों लेना, जो वनस्पति वो भी शुद्धात्मा है। उसकी आवाज अपने आप आ रही फट फट फट, सबके शुद्धात्मा समान है। हम भगवान की अभी उन्होंने प्रकट पर्याय की है, उनका पहले उनको बिल्कुल नमस्कार करके फिर हम सोचेंगे कि जिन्होंने ऐसे पर्याय प्रकट किए उनका स्वभाव भी ऐसा है, मेरा स्वभाव भी ऐसा है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। पहले भगवान का स्वरूप निश्चित करेंगे तो फिर वो शुद्धात्मा, क्योंकि शुद्धात्मा जिसको कह रहे हैं पहले उसका तो भाव भाषण तो होना चाहिए ना, और केवल ऐसा कहने से नहीं होता, वचनों में केवल मैं भी ऐसा हूँ कहने से नहीं है। वो भगवान का स्वरूप क्लियर हो जाएगा अपने ज्ञान में तो पता चलता है मैं भी वैसा ही हूँ, फिर वो कथन ऐसा बोलने की भी आवश्यकता नहीं है या ऐसा विकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, वो सहज हो जाता है। मुख्यता तो वही है, भाव नमस्कार में मुख्यता तो वही है, जैसे भगवान है वैसा मैं हूँ, परंतु वो पहले भगवान का स्वरूप निश्चित करेंगे तो फिर आगे की बात होगी। अभी स्वरूप ही निश्चित नहीं किया, बाह्य में केवल हम मूर्ति का आकार देख रहे हैं और मैं ऐसा ही हूँ ऐसा कहने से वो कुछ नहीं बनेगा।
यानी यहाँ जो बात बताई जा रही है वो आगे की यानी अगले स्टेज की है। अभी आपने जो पूछा है वो प्राथमिक स्टेज में, पहले में पहले तो मेरा स्वभाव और आपका स्वभाव एक जैसा है, ऐसा करके आपने जो पर्याय में जो कुछ प्राप्त किया है उसको मेरा नमस्कार है, और वैसी पर्याय मेरी भी हो जाए ऐसे मैं कोशिश करूंगा या करूंगी, ऐसा आगे चलेगा। लेकिन पहले तो अपन क्या करते थे कि जाके नमस्कार करके निकल आते थे, लेकिन हमने कभी उनके स्वरूप के बारे में सोचा ही नहीं है, ना अपने स्वरूप के बारे में सोचा है, ये सोचते हुए ही हमें नमस्कार करना है, यानी घाई घाई में नमो वृंदा नमो से चलो 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 चलो, ऐसा नहीं करते हुए शांति से नमस्कार करना है। यानी आप पहले स्टेज की बात कर रहे हैं और आप अगले यानी फ्यूचर की स्टेज की बात कर रहे हैं, यानी ये तो निश्चित है भाव नमस्कार जब ही कहलाएगा कि जब ही हमने अपने स्वरूप का अनुभव किया है। और अभी थोड़ा सा आपको तकलीफ देने वाली बात बोलूं क्या, जो सम्यक दृष्टि जीव है वो अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करेगा तो उसका भाव नमस्कार तो अंतरंग के अपने स्वरूप का अनुभव है, और जो जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करते हैं वो द्रव्य नमस्कार हुआ, और जिसके भाव नमस्कार है ही नहीं है और सिर्फ द्रव्य नमस्कार होता है उसको भी द्रव्य नमस्कार भाव अभाव आप द्रव्य नमस्कार भास ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो इसलिए कहा जाता है कि हम जल्दी से जल्दी जागृत हो जाए, नर्वस होके भाग जाए नहीं, यानी आभास है वो नमस्कार आभास। फिर से पढ़ता हूँ, जिन्होंने नमस्कार हो एम कहीने शास्त्रना आदिमा जिन्होंने भाव नमस्कार रूप असाधारण मंगल करियूं कहूं जे वो अनादि प्रवाहती प्रवर्तता चाल्या होता थका अनादि प्रवाहती प्रवर्तता चाल्या होता सौ इंद्रोती वंदित छे। यानी प्रत्येक जिनेन्द्र भगवान के समय में जो कोई इंद्र होंगे वो सौ इंद्रों के द्वारा ये नमस्कार हुआ है जिनको।
वो कैसे सो है वो बता रहे,
कैसे सो है बता बता। हाँ यानी 100 इंद्र कैसे होते हो बताया आपने, सुनना है तो फिर से सुनो।
देखो भवन ये सारे इंद्र और प्रतिंद्र मिलकर होते हैं, इंद्र और प्रतिंद्र, क्योंकि भवनवासी 10 प्रकार के होते हैं, उसमें दक्षिण के और उत्तर के ऐसे 20 हो गए इंद्र और 20 हो गए प्रतिंद्र, ऐसे 40 हुए। व्यंतर होते 8 प्रकार के, उसमें से 8 × 16 दक्षिण उत्तर के, और उससे भी इंद्र 16 और प्रतिंद्र 16, 32 तो ये हो गए। वैमानिकों में जो इंद्र होते हैं, कल्पवासी जो होते हैं, तो उनमें तो सदर में ईशान के ऐसे दक्षिण उत्तर ऐसे हो जाते हैं, पहला और दूसरा तीसरा चौथा, फिर बीच में 4 ही होते हैं, यानी एक एक ऐसे होते हैं। इस तरह से टोटल 16 स्वर्ग है, परंतु वहाँ पर 12 होते हैं, तो 12 इंद्र और 12 प्रतिंद्र,
24
तो ये हो गए। और फिर एक ज्योतिषी के,
चंद्रमा और सूर्य,
चंद्र और सूर्य,
और एक राजेंद्र जो चक्रवर्ती या राजेंद्र होगा, और एक
और
तीरेंद्र का राजा
होगा, जो है अष्टापद कहते हैं या सिंह कहते हैं। ये 100 इंद्रियों के हमेशा ऐसा ही है कि जहाँ तीर्थंकर होते हैं वहाँ 100 इंद्रियों से वो वंदित होते हैं। ये अनादि परंपरा चली आ रही है, यानी जिनेन्द्र भगवान भी अनादि से है, और 100 इंद्र भी उनको, यानी उस जमाने के जो 100 इंद्र है वो उनको नमस्कार करते हैं।
देखो यहाँ क्या लिखते हैं सेकंड लाइन में, जे वो अनादि प्रवाती प्रवर्तता एटले चाले होता तका, यानी जिनेन्द्र भगवान भी एक के बाद जो कुछ अनादि से हो रहे हैं, प्रवाहती प्रवर्तता चाल्या होता 100 इंद्रोती वंदित छे, यानी उस जमाने के उस काल के जो 100 इंद्र होंगे उनसे, एम कहीने सदाए देवादि देव पना ने लीधे तेवोज एटले एम कहीने सदाए देवादि देव पना ने लीधे तेवोज जिनुज असाधारण नमस्कार ने योग्य छे एम कहूं, जेमनी वाणी अर्थात दिव्य ध्वनि त्रण लोक ने ऊर्ध्व अधो अने मध्य लोक वर्ती सगड़ाए जीव समूह ने निर्बाध विशुद्ध आत्मतत्व ने उपलब्धिनो उपाय कहनार होवाती हितकर छे। देखो ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी हितोपदेशी होती है, हितकर होती है, तो किसके लिए होती है, तो तीनों लोगों के जीवों के लिए होती है। परमार्थ रसिक जनों ना मन ने हरनार हुआ थी मधुर छे, अने समस्त शंकादि दोषों ना स्थान दूर करवामा आयवा हुआ थी विशद एटले निर्मल स्पष्ट छे एम कहीने जिनु समस्त वस्तु ना यथार्थ स्वरूप नो उपदेश करनारा हुआ थी विचारवंत डाया पुरुषों बहुमान ने योग्य छे, अर्थात जेमनो उपदेश विचारवंत डाया सत पुरुषों बहुमान पूर्वक विचारवो जोइए एवा छे एम कहूं। अन ये समझ में है ना, अनंत क्षेत्र थी अंतरहित अने काल थी अंतरहित परम चैतन्य शक्ति ना विलास स्वरूप गुण जेमने वर्ते छे, इन्हें क्षेत्र की दूरवर्ती और काल से भी दूरवर्ती ऐसे सभी पदार्थों को वो जानते हैं, परम चैतन्य शक्ति ना विलास स्वरूप गुण जिमने वर्ते चे एम कहीने जिन्होंने परम अद्भुत ज्ञानातिशय प्रकट थयो हुआ थी ज्ञानातिशय ने पामेला योगिंद्रोति पन वंदे चे, यानी वो उनको मुनिराज भी नमस्कार करते हैं। वो भी मुनिराज कैसे हैं कि जिन्होंने ज्ञानातिशय जिनका प्रकट हो गया है, लेकिन जिनेन्द्र भगवान का परम ज्योति है, परम ज्ञान शक्ति है उनके पास,
तो केवल ज्ञानी और ये तो शुद्ध केवल ही भी हो सके,
योगिंद्रो थी पन वंदे छे
सारे लेना, ज्ञानातिशय है ना, ज्ञानातिशय प्रकट हुआ है, यानी वो तो चौथ पूर्वधारी भी हो, यानी सब द्वादशांग के धारी भी उनको नमस्कार करते है, चले ना
भव अर्थात सं
श्रुत केवल ही होते, ये केवल ज्ञानी है। अरे केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान में फर्क नहीं है क्या? अरे उनको केवल चौथ पूरे तो चुत ज्ञान का भेद है, बारहवें अंग का भेद है वो, समझे न बात।
भव अर्थात संसार ऊपर जेमने जय मेळव्यो छे एम कहीने कृतकृत्यपणु प्रकट थयु होवाथी तेवो ज एटले जीनो ज बीजा अकृतकृत्य जीवोने शरण छे एम उपदेश्यु। आ प्रमाणे सर्व पदोनु तात्पर्य छे। क्या कहते हैं कि जिन्होंने संसार ऊपर जय प्राप्त किया है, अभी जो अभी अरहंत हुए सिद्ध होने वाले हैं या सिद्ध हो गए ऐसे जीवों के बारे में बता रहे हैं, उन्होंने जो करने योग्य जो बात थी कृतकृत्यपणु प्रकट करू छे, अने उसके लिए क्या कह रहे हैं कि जो अकृतकृत्य जीव है उनके लिए वही शरणभूत है। तब इसके ऊपर स्वामी जी के प्रवचन है वो हम लेंगे। आ शास्त्र अनुसार सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति थई शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति थवी ते छे। आ पंचास्तिकाय की प्रथम गाथा छे। भगवान ने नमस्कार एज मांगलिक छे, मांगलिक करता ज्ञान की वृद्धि थाय छे, विघ्ननो नाश थाय छे तथा सुखनी प्राप्ति थाय छे। ये मांगलिक क्यों करना, तो तीन बातें बताई है। क्या क्या बातें बताई है? ज्ञान की वृद्धि होती है और जो कोई विघ्न होता है उसका नाश होता है और सुख की प्राप्ति होती है। आ पंचास्तिकाय शिव कुमार महाराज आदि शिष्यों माटे बनावे छे।
देखो ये कहाँ से आए तो जरा पहला पेज निकालो, ये हम पूरी तात्पर्य वृत्ति नहीं पढ़ने वाले हैं, परंतु उसमें से जो जहाँ से शुरुआत हुई थी ना, एक नंबर का जहाँ श्लोक हमने पढ़ा उसके भी ऊपर एक था, स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मा ने शुद्ध जीवासी काया नित्यानंद चिदे नमा। यानी वहाँ तो जो स्वसंवेदन सिद्ध ऐसे जो जिनेन्द्र परमात्मा है, और कौन है वो, तो शुद्ध जीवास्तिका है। हाँ, ऐसे जो नित्य आनंद रूप जो है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और उसके नीचे बताए कि ये क्यों लिखा है शास्त्र, तो यहाँ कहते अथ श्री कुमार नंदी सिद्धांत देव शिष्य ही। यानी अब यहाँ कुमार नंदी नाम के मुनिराज हो गए, उनके जो शिष्य है उन्होंने इसकी रचना की है, यानी कुंदकुंदाचार्य ने की है। यानी कुंदकुंदाचार्य है कुमार नंदी के सिद्धांत देव के वो शिष्य है। शिष्य ही प्रसिद्ध कथा न्यायन पूर्व विदय हम गत्वा वीतराग सर्वज्ञ सीमंदर स्वामी तीर्थंकर परम देवम दृष्टवा। यानी वो शिष्य ने क्या किया, तो जो उनकी कथा प्रसिद्ध है तो वो पूर्व विदय में गए थे, वहाँ 8 दिन रहे थे, वीतराग सर्वज्ञ सीमंदर भगवान की वाणी सुनी थी। यानी तीर्थंकर परम देवम दृष्टवा, उनको देखकर यानी उनका दर्शन करके, तन मुख कमल विनिर्गत, उनके मुख कमल से निकली हुई दिव्य वाणी श्रवण अवधारित, यानी दिव्य ध्वनि को सुना और उसका अवधारण किया, जाना, धारण किया। अवधारित पदार्थात, यानी उसमें से अवधारित जो पदार्थ है, पदार्थों को जाना, उसमें से शुद्धात्म तत्वादि सार्थम ग्रहत्वा, शुद्धात्म तत्व आदि को अर्थ सहित ग्रहण करके पुनरपि आगत ही, वो शिष्य ही और पुनरपि आगत ही, और वापस आए हुए शिष्य के द्वारा। यानी उसके पहला विशेषण बनाया कुमार नंदी के शिष्य, और ये वहाँ जाकर जिन्होंने जे आए हुए ऐसे, और श्रीमद कुंदकुंदाचार्य देव ही। ऐसे कौन है, तो श्रीमद कुंदकुंदाचार्य देव, उन्होंने अभी उसका और कैसा वर्णन है, पद्मनंदी आदि अपराभिधेय ही, यानी जिनके पद्मनंदी आदि अन्य नाम है, ऐसे जो कुंदकुंदाचार्य है, उन्होंने अंतस्तत्व बहिस्तत्व गौण मुख्य प्रतिपत्त्यर्थम, अंतस्तत्व और बहिस्तत्व इनका गौण और मुख्य रूप से उसका प्रतिपादन करने के लिए, अभी अंतरंगी आत्मा तत्व बाह्य तत्व इस तरह अन्य पदार्थ और आत्मा अथवा यानी वो प्रतिपादन करने के लिए ये शास्त्र की रचना की अथवा शिव कुमार महाराज आदि संक्षेप रुचि शिष्य प्रतिबोधनार्थम शिवकुमार महाराज आदि जो कोई वहां थे संक्षेप रुचि वाले एक होते विस्तार रुचि वाले एक होते संक्षेप रुचि वाले ऐसे शिष्य अलग अलग बताए जाते हैं तो उनके प्रतिबोधन करने के लिए विरचिते रचना की किसकी पंचासिकाय प्रावृत शास्त्र पंचासिकाय प्रावृत नाम का ये शास्त्र है उसमें यथा क्रमेण अधिकार शुद्धि पूर्वकम तात्पर्य व्याख्यानम कथ्यते वो स्वयं की बात करते हैं कि पंचासिकाय उन्होंने रचना की हुई ऐसे जो पंचासिकाय शास्त्र है उसमें यथाक्रम से अनुक्रम से वो अधिकार कौन कौन से उसकी बात बताएंगे पहले अधिकार में ये है दूसरे अधिकार में जैसे अमृतचंद्राचार्य ने अधिकार बनाए तीन वैसे उन्होंने भी बताए अभी उसके डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे तीन पेज का संस्कृत है तो बाकी उसमें जो बात आने वाली है वो शत इंद्र वगैरह वो तो इन्होंने बता ही दी है अभी हम आगे बढ़ेंगे जहाँ से हाँ वो उनके गुरु कुंदकुंदाचार्य का नाम बहुत सारे नाम थे ना वक्र ग्रीव वगैरह एलाचार्य कुंद कुंद गुरुद पिष्ठाचार्य वक्र ग्रीव क्योंकि ऐसे बाकी मानते और पद्मनंदी हाँ बहुत सारे प्रावृत रचे 84 का कुछ 84 थे 84 प्रावृत लिखे थे उन्होंने परिक्रम ग्रंथ की भी रचना की थी पूरे बहुत सारे उनके ग्रंथ नष्ट भी हो गए कुछ है अभी जो जिसको ने मुख्य मुख्य तो है अध्यात्म शास्त्र के
वो भी तो मुख्य होते होंगे लेकिन अपने को
पता नहीं तो क्या था उसमें हाँ। शतखंड अगम की तो शिकार रही नहीं उनकी परिक्रमा नहीं है धौलाकार के सामने था उन्होंने उनका रेफरेंस दिया है पर उनके सामने था अपने सामने नहीं है
हाँ अभी शुरू करेंगे आ पंचास्तिकाय शिव कुमार महाराज आदि शिष्यों माटे बनावे छे तेनो हेतु अज्ञाननो नाश सम्यक ज्ञाननी उत्पत्ति अने शुद्ध स्वभावनी प्राप्तिनो छे यानी ये शास्त्र पढ़ने से क्या क्या होने वाला है तो कहते हैं कि अज्ञान का नाश होगा सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होगी और शुद्ध जो स्वभाव है उसकी प्राप्ति है
अभी आत्मानुशासन में पढ़ा ना ज्ञान का फल क्या है वस्तु संबंधी ज्ञान होना यही उसका फल है अज्ञान का नाश यही ज्ञान का फल होता है और हम उसमें फल क्या चाहते हैं विषयों की सामग्री अभी बात आई थी ना ज्ञानी को उसमें आश्चर्य लगता है और वो मोह की महिमा है यहाँ तो बता रहे उसका हेतु क्या है यानी ग्रंथ क्यों रचा गया है उसका हेतु क्या है ये हमेशा बताया जाता है मंगलाचरण में ही बताया जाता है तो कहते उसका हेतु यानी किसके निमित्त से बताया तो शिव कुमार वगैरह उनके आदि शिष्य और उसका कारण क्या है तो अज्ञान का नाश समय ज्ञान की प्राप्ति
फिर से पढ़ता हूँ तेनो हेतु यानी ये जो शास्त्र लिखा है उसका हेतु क्या है तो कहते हेतु अज्ञाननो नाश सम्यक ज्ञाननी उत्पत्ति अने शुद्ध स्वभावनी प्राप्तिनो छे तेनु परिमाण परिणाम लिखा वो परिमाण चाहिए एटले तेनी गाथा संख्या तेनु नाम पंचास्तिका है तेना मूलकर्ता सर्वज्ञ भगवान श्री वर्धमान स्वामी उत्तर करता गणधर श्री गौतम स्वामी ने परंपरा करता श्री कुंदकुंदा आचार्य देव छे श्री कुंदकुंद यानी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये सभी ग्रंथ का मूल जो है वो तो सर्वज्ञ भगवान यानी जो महावीर भगवान के काल में हो गए ना, तो महावीर भगवान है, और उसके बाद उत्तरकर्ता कौन है, तो वो महावीर भगवान की वाणी किसने सुनी, क्योंकि गणधरों ने, और परंपरा जो है वो परंपरा से गौतम स्वामी की परंपरा से आगे कुंदकुंदा आचार्य देव इसके करता है, यानी ये बिल्कुल जिनेंद्र भगवान के वाणी के अनुसार ही है, अपने घर की कोई बात उसमें ऐड की हुई नहीं है। श्री कुंदकुंदा आचार्य भगवान ने नमस्कार करे छे, ते भगवान केवा छे, भगवान अनादिना छे, सो इंद्रो थी पूज्य छे, भगवान नी वाणी मीठी मधुरी ने रसिक छे, ने ते वाणीना संभरनारा पात्र जीवो पण एवा छे के जेवो सम्यक ज्ञान पामवाने योग्य छे, जेमने संसारनी अरुचि थई छे अने स्वभावनी प्राप्ति करवी छे। पंचास्तिकायनुं फळ अज्ञाननी निवृत्ति ने ज्ञान स्वभावनी प्राप्ति छे। ये शिष्ट है, उसका शिष्य चाहिए, वो शिष्य शिष्य सम्यक ज्ञान पामी शुद्धिमा वधे ने चैतन्य नो अनुभव करे ते आ शास्त्रनु फल छे। भगवान अनंत ज्ञान दर्शनादि गुणों नो भरपूर भंडार छे। हवे भगवान ना गुणों नी वात करे छे, अंतरहित भगवान ना गुणों छे। ये अंतर रहित यानी कितने होने चाहिए बहन? अनंत यानी जिसका अंत नहीं है, अंतर रहित अनंत, अंतर रहित भगवान ना गुणों छे। भगवान ने अनंत ज्ञान अनंत दर्शन वगैरह गुणों पकड़ी गया छे, जेनो पार नथी, एवा पोताना ज्ञान थी बधी वस्तु ने क्षेत्र ने कारणी मर्यादा वगर जानी शके छे। यानी कोई किसी भी क्षेत्र की या काल की मर्यादा उसको बाधा नहीं लाती, वो सबको जानते हैं।
ये नहीं जुदा चाहिए क्या? हाँ? आप में उसमें जुदा है? क्षेत्र ने काल नहीं मर्यादा चाहिए ना, क्षेत्र ने नहीं जुदा चाहिए, क्षेत्र नहीं मर्यादा नहीं है, काल नहीं मर्यादा नहीं, क्षेत्र ने काल नहीं मर्यादा वगैरह।
તે જ્ઞાનાધિગુણો પોતાના અસંખ્ય પ્રદેશી ક્ષેત્રમાં રહેલા છે, પણ બીજાના ક્ષેત્રમાં નથી। એક સમયમાં અનંત જ્ઞાન અનંત દર્શન અનંત વીર અને અનંત સુખ પ્રગટી ગયેલ છે। એક સમયમાં અનંત ગુણોની થઈને અનંતી પર્યાયો છે, એક પર્યાયમાં અનંત અવિભાગ પ્રતિચ્છેદો છે। ભગવાને પાંચ પરાવર્તન રૂપ સંસાર જીત્યો છે। એ પાંચ પ્રકાર કા પરાવર્તન માલુમ હૈ આપકો? મીરીભાઈ બતાવો ભાઈ। હા, એ પાંચ પરાવર્તન હૈ, વો ક્યા હૈ અભી વો સમજને કે લિયે ટાઈમ લગેગા, લેકિન વો આજ તક જીવ જો અનાદિકાલ સે મિથ્યાત્વ મેં ભટક રહા હૈ, तो कितना समय उसने निकाला है, वो समय अनंत हम कहेंगे, लेकिन वो अनंत समय कैसा गिनना, वो गिनने के लिए ये परिमाण है, तो उसको पंच परावर्तन कहते हैं। तो भगवान ये पांच परावर्तन रूप संसार ने जीत्यो छे। वळी भगवान केवा छे? द्रव्य लिखा है, देखो, द्रव्य क्षेत्र काल भव अने भाव रूप पांच प्रकारनू परावर्तन जीत्यू छे। एटले के जे करवानू हतू ते करी लीधू, ने संसार थी जीवन मुक्त थया। केटलाक लोको कहे छे के भगवाने बीजानू भलू पण करी दीधू, उपदेश आप्या, चार तीर्थनी स्थापना करी, हिंसा अटकावी, जगतने सत्य समझाव्युं, पण ए बधा निमित्तना कथनो छे। ભગવાને પરનું કાંઈ કર્યું નથી, કારણ પરનું કોઈ પણ જીવ કાંઈ પણ કરી શકતો નથી। પોતે પોતામાં ભાવ મોક્ષની પર્યાયનો ઉત્પાદ કર્યો અને સંસાર પર્યાયને જીત્યો, એ સિવાય બીજું કાંઈ કર્યું નથી। ચિન્નાણમ તારે આણમ પાઠ આવે છે, એ શાયદ આપકો માલુમ હોગા, આપને હોતે ને તિયા ને ચિન્નાણમ તરણ તારણ છે એટલે કે બીજા પોતાથી તરે તો ભગવાન નિમિત્ત કહેવાય. ભગવાન છદ્મસ્થ જીવોને મોક્ષ પામવામાં કઈ અપેક્ષાએ શરણભૂત છે? વળી જે જીવોને મોક્ષ દશા પ્રાપ્ત થઈ નથી તેને ભગવાન શરણરૂપ છે એ કથન નિમિત્તનું છે. કોઈ કોઈને શરણ આપી શકતું નથી, પણ જીવ પોતાના આત્માની સાચી સમજણ કરી અંતરદશામાં એકાગ્ર થઈ રાગને અલ્પજ્ઞતા ટાળી વિતરાગને સર્વજ્ઞપદ પ્રકટ કરે છે તો ભગવાન નિમિત્ત કહેવાય છે. ચાર શરણનો પાઠ તો જીવ આનંદથી વાર બોલી ગયો. આપને બોલા કે કભી? હા હા બોલો બોલો. યાદ માલુમ હે નો ચાર પાંચ? અરિયંતે શરણમ પહોંચામિ,
અરિયંતે શરણમ પહોંચામિ.
તો ચાર શરણનો પાઠ તો જીવ આનંદથી વાર બોલી ગયો, પણ પોતાનો આત્મા નિમિત્ત રહિત ને રાગ રહિત છે એટલે સ્વરૂપ જાણ્યા વિના ને તેના શરણ વિના ભગવાનનું શરણ નિમિત્ત પણ પામે નહીં. ખ્યાલમાં આવ્યા? સ્વભાવનું શરણ લે તેને ભગવાનનું શરણ નિમિત્ત કહેવાય છે. દેખો બાત એસી હૈ કે યહાં પર યહી બાત બતા રહે હૈ કે હમને તો શરણ કે પાઠ બોલે, લેકિન ક્યાં હો રહા હૈ કે યે જો સબ મેં સ્વયં કૈસા હું તો નિમિત્ત સે રહિત હું, રાગ સે રહિત હું, લેકિન ક્યાં હમને એસા માના હૈ કે મેં રાગ સે રહિત હું તો હમે આત્મા કા અનુભવ કૈસે હોગા? ક્યોંકિ આત્મા કા અનુભવ ઉસી કો હોગા કે જૈસા જિનેન્દ્ર ભગવાન ને આત્મા કા સ્વરૂપ બતાયા હૈ એસે આત્મા કા અનુભવ હોગા તો આત્મા અનુભવ કહેને મેં આયેગા. इसलिए कह रहे हैं कैसे बताया होगा,
कैसे बताया है वो कान?
शास्त्र ये लिखते हैं ना शास्त्र में, हाँ बार बार लिखते हैं कि पर का कर्ता नहीं है तो क्या उसका एक ऐसा थोड़ी पैराग्राफ बना के ऐसा ऐसा है क्या? नहीं पर का करता नहीं है, स्वयं का कार्य करने में स्वतंत्र है, ये सारी बातें उसकी बातें आती है ना. तो वो अपन एक दफे बैठ के लिखना चाहिए तो फिर दूसरों को काम में आवे. ये मुख्य महत्व की बात है. स्वभाव नु शरण ले तेने भगवान नु शरण निमित्त कहवाय छे. એવા જિનેશ્વર ભગવાનને નમસ્કાર હો. આવા જિનેશ્વર ભગવાનને નમસ્કાર હો જે જીવ નિમિત્ત સંયોગો રાગ દ્વેષ અને પુણ્યની રૂચિ છોડી અંતર એકાગ્રતા કરે છે તે ભાવ નમસ્કાર છે. આવો ભાવ નમસ્કાર પોતાના આત્માને કરે છે તેને દ્રવ ભગવાનને દ્રવ્ય નમસ્કાર સાચો કર્યો કહેવાય છે. સર્વજ્ઞ દેવને ત્રણ કાળ ત્રણ લોકનું જ્ઞાન વર્તે છે, તેમના સિવાય બીજા કોઈ દેવને તે જીવ માનતો નથી. એ પ્રમાણે ઉપર કયા તેવા ગુણવાળા ભગવાનને નમસ્કાર કર્યા. હવે આચાર્ય ભગવાન જીના ગમને નમસ્કાર કરી પંચાસ્તિકાય રૂપ સમયસાર ગ્રંથ કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે.
પહેલે ના યહાં પહેલે બતાયા થા ના ઇન્હોને ઇસ ગ્રંથ કરતા કે મૂળ કરતા કોણ હૈ, મૂળ કરતા કોણ હૈ એસા પૂછા થા. જરા વો હમારે મેં પાંચ નંબર પેજ હૈ
સાત એમ કે હું
જૈસેન આચાર્ય ટીકા કી લાસ્ટ ચાર લાઇન ક્યા લિખા હૈ ઉસમે? હા મૂળ તંત્ર કરતા કરતા કથ્યતે, કરતા કે બાદ બતાતે, વો તીન પ્રકાર કે હોતે હૈ. મૂળ તંત્ર કરતા, ઉત્તર તંત્ર કરતા, ઉત્તરોત્તર તંત્ર કરતા ભેદે નહી. યાને કિસી ભી ચીજ કી કરતા બતાને હૈ તો તીન પ્રકાર સે બતા જાતે હૈ. તો મૂળ તંત્ર કરતા કાલ અપેક્ષયા શ્રી વર્ધમાન સ્વામી, ક્યોંકિ અભી તો હમારે લિયે વર્ધમાન સ્વામી હૈ. वो कैसे अष्टादश दोष रहित अनंत चतुष्टय संपन्न इति, वो 18 दोषों से रहित और अनंत चतुष्टयों से युक्त है। उत्तर ग्रंथकर्ता श्री गौतम स्वामी गणधर देव, गौतम स्वामी गणधर देव उनके हुए, क्योंकि महावीर के गणधर वो थे प्रमुख। वो कैसे तो चतुर ज्ञान धरह, चार ज्ञान के धारक है, सप्तर्धि संपन्नश्च, सप्तरिद्धियों से संपन्न है। उत्तरोत्तरा बहवो यथा संभवम, और गौतम स्वामी अकेले नहीं होते, गणधर तो अनेक भी हो सकते हैं। तो कहते कि ये उत्तर ग्रंथ करता बता रहे उत्तरोत्तर, गणधर भी अतर अनेक होते वो नहीं, तो परंपरा से आचार्यों की परंपरा से जो उसको उत्तरोत्तर कहेंगे। मूल ग्रंथ करता सर्वज्ञ देव, उत्तर ग्रंथ करता गणधर देव, तदुत्तर ग्रंथ करता नहीं उसके उत्तरोत्तर जो आचार्यों की परंपरा, इस तरह से वो ग्रंथ की बात बताती। और अभी जो वर्तमान में किसने किए तो कुंकुंदाचार्य। हाँ, साथ ही होती है ना, वो सब ज्यादा होती है, उसके उत्तरोत्तर भेद है, साथ बाकी सब उसके उत्तरोत्तर भेद। हाँ, वो इसी के भेद। हाँ, ये बुद्धि रुद्धि वगैरह, एक केवल ज्ञान रुद्धि छोड़कर बाकी सब रुद्धियों के स्वामी होते हैं। केवल ज्ञान भी एक रुद्धि है, उसको छोड़कर बाकी सभी उनके पास है। वो चारण रिद्धि वगैरह जो आते हैं ना तंतु, चारण रिद्धि के भी कितने भेद होते हैं, ऐसे अनेक रिद्धियां होती है बाप। वो अक्षिण मानस वगैरह क्या क्या होती है ना सारी, हमने पहले एक बार पढ़ के देखी थी ना उसमें से। हाँ, अब कहते कि कर्ता क्यों बताना, कर्ता किमर्थम कथ्यते, ये महत्व का वाक्य है। कर्तृ पामान्यात वचन प्रमाणम इति ज्ञापनार्थ, कर्ता जो है ग्रंथ कर्ता क्यों कहना, तो कर्ता की प्रमाणता से उनके वचन की प्रमाणता सिद्ध होती। ये किसने लिखा है ऐसा हम पूछेंगे, अरे आचार्य हाँ तो ये तो प्रमाण है, ये किसने बताया, मूल में तो सर्वज्ञ भगवान ने, तो उन्होंने बताया हुआ तो सब ही सत्य है। फिर गणधर आचार्यों ने, वो भी चार ज्ञान के धारी है, इतने सब है रिद्धि के धारी है, उनकी भी बात सत्य है, और उत्तरोत्तर आचार्यों ने, वो भी सत्य महाव्रत के धारी है, तो इस तरह से ये ग्रंथों की रचना ये सत्य है। तो कहते कर्तृ प्रामाण्यात वचन प्रमाणम इति ज्ञापनार्थम, कर्ता के प्रमाणता से वचन की प्रमाणता सिद्ध होती है। इति संक्षेपेण मंगलादि अधिकार षटकम प्रतिपादितम व्याख्यातम, यानी उन्होंने मंगल के ऊपर बहुत सारी बातें बताई, मंगल किसको कहना, वो निबद्ध मंगल अभिनिबद्ध मंगल, मंगल के कहने के क्या क्या उसके बातें होती, क्यों कहा जाता है, मंगल का अर्थ क्या आदि, बहुत सारी उन्होंने बातें यहाँ बताई है। अब उसमें से जो अपने को जितना लागू होता है उसकी बात हमने यहाँ देखी है, अभी हम
यही रुकेंगे,
कल दूसरा नंबर का जो गाथा है उसको पढ़ेंगे।
जावाणी के ज्ञान तय सूझे लोकानु सोवाणी मात्र नमो सदा देतो।